आपके जहन में कुछ क्रिकेट चल रहा है? दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं आपके शहर ब्रैम्पटन में। बाबर आजम, डेविड वार्नर, क्रिस लीन, शाहीन अफरीदी, शकीबुल हसन और मजीद सुपरस्टार को देखिए एक्शन में जुलाई 25 से 11 अगस्त तक टीडी क्रिकेट अरीना ब्रैम्पटन में। बुक योर टिकट्स नाउ एट tickets.gt20.ca एंड डू नॉट मिस आउट नॉर्थ अमेरिकाज बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट।
10 दिन हो गए तेनु स्नेहा लाई नू, पर तू इग्नोर ही कर रहा। हूं फोन इग्नोर हो जूगा, गोलियां इग्नोर नहीं होनी। आपका ते आपके परिवार का ध्यान रखी, फिर ना कहीं भी दस्या नहीं।
जस्टिन ट्रूडो दी सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसीज की वजह नाल एक्सटॉर्शन राइज से है। लिबरल्स ने एक्सटॉर्शन ते पेनल्टीज भी घटा दितियां हन। इस दौरान पीयर पॉलीएफ एक्सटॉर्शन दे अगेंस्ट बिल लेके आए सन अते जस्टिन ट्रूडो ते जगमीत सिंह ने इस दे खिलाफ वोट की। हुन सिर्फ कॉमन सेंस कंजरवेटिव्स ही कैनेडा का माहौल ठीक कर सकते ने। ब्रॉट टू यू बाय पीयर पॉलीएफ एंड कैनेडाज कंजरवेटिव।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करने चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
چاندنی
بینکویٹ ہال،
انٹیلیجنٹ چوائس locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300, 905-272-2300, airwings.ca।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसा मंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स इंटीरियर के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेरियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसेस सागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान, 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
ग्रिल इन हार्ट मिसेस सागा में ऑर्डर वाय फोन इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383 ग्रिल इन हार्ट।
BMK proudly brings you Big Bickering Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Midway. Mark your calendars for August 31st and September 1st. The first ever open air concert with a tribute to the legendary Jagjit Singh by Mozam Ali Khan. Enjoy free parking at admission, the sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets. Contact us at 416-897-1683 or info at bmkevents.com.
वेलकम बैक तमाम सामईन को जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं और ई आवाज टीवी पर देख रहे हैं। जनाब मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और गर्मा गर्म खबरें लेके शाजिया मलिक साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो पहले सबसे पहले उनको जो है प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं?
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और आपको नमस्ते और आपको सलाम और आपको वड़ाकम और आपको जो है वो सबसे याकाल।
बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। जैसे कि आप सब जानते हैं मंडे का दिन हफ्ते का पहला दिन शुरू हो चुका है। शुरू क्या, हमारा क्यों शुरू हो चुका, कोई खबरें जो है जो अब आपको जो अब खबरें सुनने को मिलेंगी ना वो आपका दिन शुरू करेंगी, मतलब समझिए आपके पास वो धमाकेदार खबरें, वो अंदरूनी साजिशें, किसने किसका गला काट दिया, कौन कहां धमाके करने जा रहा है, जो बाइडन साहब जो हैं वो स्टेप डाउन हुए हैं तो वो जो हैरिस साहिबा आ गई हैं वो कहां रहती थीं, क्या करती थीं, क्या कुछ कनाडा से उनके कोई ताल्लुकात हैं, क्या कुछ अटैचमेंट है उनके कनाडा से, ये सब अंदर की खबरें। नहीं मैं नहीं शाजिया जी देंगे मैं थोड़ा सा उसको हाइप क्रिएट कर रहा था ना, मैं उसका थोड़ा एक प्रोमो बना रहा था
उसका। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम गलत प्रोफेशन में हो, तुम नौटंकी करो यार, तुम ड्रामा कंपनी में जाओ भाई, कोई तुम कोई फिल्म स्टार स्टार बनो, तुम्हें बहुत अच्छे ड्रामे करने आते हैं। हाँ क्या एक्टिंग है, ओहो अगर उस वक्त कोई तुम्हारी शक्ल देख रहा होगा ना एक्टिंग में, उसने तुम्हें कहना था आजा बेबी तू मेरे को आजा एक्टिंग वास्ते मेरी फिल्म के बीच आहो, क्या तुम जाके आप गलत प्रोफेशन में हो, आप नौटंकी करो भाईजान।
थैंक यू शाह जी, थैंक यू।
आपकी बेगम भी बहुत खुश होगी और देखो आप पैसा भी बहुत कमाओगे।
आई एम फीलिंग गुड
ना, तो आपका पैसा ज्यादा आएंगे।
आप जो बातें कर रही हैं
जी
और वो जो है सिलसिला जो है वो चलता रहेगा ऐसे मेरे ख्याल से। एक जो है वो ब्रेक ले लेते हैं,
छोटी सी
पहले एक छोटी सी ब्रेक ले
लेते,
वो कहते हैं ना कि जो
गर्मी बहुत पड़ रही है
नहीं गर्मी तो
एक समर ब्रेक लें, जैसे वो होता है ना टेक अ ब्रेक फॉर
एक ब्रेक लेके और ये गर्मा गर्म, क्योंकि जो इस वक्त जो
एफसी
से गुजरा है ना एकदम ऊपर से कुछ आवाज देता हुआ तो वो मैं सुन लूं कि क्या हालात हैं, फिर उसके बाद वापस आता हूं। तो कहीं नहीं जाना जनाब, खबरें यही हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम में वापस आते हैं।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन, फिलिंग क्राउन्स ब्रिजेस क्लीनिंग एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 299-7466। गाड़ी घर या कमर्शियल जैसे कि बिजनेस ट्रक्स डिलीवरी व्हीकल्स कार्गो वैन्स वर्कशॉप्स ग्रोसरी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट के लिए वकार अजीम 416-302-2522 302-2522 भाई खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं। चूड़ियाँ ले लो, कड़े ले लो, चेन्स ले लो, स्टोन ज्वेलरीज, रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना। शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी अब या किसी को गिफ्ट देने के लिए यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड 9056776888।
वेलकम बैक तमाम सामाइन को एक बार फिर। जनाब जैसे मैंने कहा था एक छोटा सा ब्रेक और वापस आ गए हैं। अब गर्मा गर्म खबरों की तरफ चलते हैं शाजिया मलिक साहिबा की। शाजिया मलिक साहिबा की गर्मा गर्म खबरों के बाद हम आपको एक अपने स्पेशल गेस्ट से मिलाएंगे वो खबरों के बाद। ठीक हो गया? तो पहले शाजिया जी की गर्मा गर्म खबरें हैं भाई। गर्मी है
फिर नौटंकी।
अच्छा नहीं, नहीं मना कर रही है, छोड़ दो यार, मैं इनके भले के लिए बात कहने वाला था। इस वक्त जो मैं बात कहने वाला था ना वो इनका इनके लिए भला था। अच्छा, लेकिन अच्छा, हाँ भला अगर तेरा भला होगा कि फिलॉसफी अब खत्म। हाँ, जिसका गला दबा हुआ आंखें निकालता है तो अब मैं किसी का गला नहीं दबा रहा। तो भैया अब आप
सारी फिलॉसफी उल्टी हो चुकी हैं। तो क्या होता था हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अभी जो खेल कूद रहा है वो नवाब बन रहा है,
आगे जा रहे हैं
वही आगे जा रहे हैं। हम जो है पागल के बच्चे जो इतना इतनी मेहनत कर रहे हैं, मिलियन डॉलर नहीं हमारा बन रहा और ना हमारी कोई सुन रहा है। कोई सीक्रेट सर्विस के बंदे भी नहीं सुन रहे।
देखें आप खुद नहीं सुन रही है मेरी एक बात जो मैंने ऑफ द एयर आपसे कही थी, अगर आप भी सुन लें तो मिलीनियर तो बन जाएंगी।
अच्छा अच्छा, वो जो तुमने गंदी किस्म की बात की है ना मेरे साथ मुझे अमीर करने के लिए, मैंने बिल्कुल उस तरह का फालतू किस्म का जो तुम्हारी फालतू गिरी है ना मैंने सुननी है ना मैंने फालतू काम वो वाला करना है। ठीक है, अपनी जेब की जो है ना तुम्हारी छोटी सी मुन्नी थी तुम्हारी तरह की जेब, वो अपनी सजेशन अपनी उस मुन्नी जेब के अंदर रखो।
अरे चले भाई, एक आदमी ने शख्स ने किसी ने आगे तरक्की कर,
नहीं 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 कोई तरक्की, तुम आगे तरक्की कर लो, मेरे मुझे रहने दो,
मैं तो टावल की फैक्ट्री से
बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे और आप यहां पे जा सकते हैं, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, 8 आइटम्स जी $10 में देते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, लुट सेल लगी हुई है जी। तो आप इधर जाओ ओपन माइक कैफे पे, आपको बड़े मजे के खाने मिलेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं इनको, नासिर शाह साहब को। इनका जो ये रेस्टोरेंट है इट इज लोकेटेड एट 1310 डेनलेस स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 3 मिसिसागा में और इनका नंबर है 416-526-6800। और जनाब राजा थे बादशाह जी, राजा बादशाह जी जो है ऑल स्टेट के साथ होते हैं और इनका नंबर है 6472903773। आपको बड़ी राइट कवरेज देते हैं यानी ऑटो और होम इंश्योरेंस देते हैं, आप इनके पास जा सकते हैं। और जी ये आप जाएं डॉक्टर नाजिया रहमान के पास अगर डेंटिस्ट्री की कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो कहती हैं बहुत स्पेशल ऑफर्स भी हैं, लेकिन शर्त क्या है उनके पास जाना पड़ेगा आपको, आप जाएंगे तो आपको वो बताएंगी। डेंटिस्ट्री ऑफ मिसेस सागर पे और वो कहते हैं जी के न्यू एंड इमरजेंसी पेशेंट्स जो हैं वो उनको हमेशा हम वेलकम करते हैं। इनको आप कॉल कर सकते हैं एट 905-872-1100। ठीक है जी, ओके जनाब, हम शुरू करते हैं अपनी खबरें। अगर आपने हमारा वेबसाइट भी देखा होगा और आपको खुद भी पता ही चला ही होगा वीकेंड के ऊपर कि बाइडन साहब ने फाइनली प्रेशर के अंदर आके ही स्टेप बैक, उन्होंने कहा जी कि मैं प्रेसिडेंशियल रेस में नहीं जा रहा हूं। अब इसके ऊपर जो है ट्रूडो साहब को बहुत क्वेश्चंस किए गए। ट्रूडो साहब से पूछा गया जी कि अब तो शायद ट्रंप 2-0 शुरू होने वाला है तो आपके क्या जो है इसके ऊपर तासरात है, तो उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि जी वो बड़े चैलेंजिंग होंगे, लेकिन कल तो इन्होंने ज्यादा बात जो है अपने ट्विटर के ऊपर बाइडन साहब के बारे में की। उन्होंने कहा जी कि मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूं, ही इज अ ग्रेट मैन और उन्होंने हमेशा अपने मुल्क की मोहब्बत में जो भी काम किया वो किया है। उन्होंने कहा जी कि बाइडन साहब जो हैं वो हमेशा से ट्रू फ्रेंड हमारे रहे हैं और कैनेडियंस ने हमेशा प्रेसिडेंट बाइडन में अपना पार्टनर जो है वो पाया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कमला हैरिस की भी तारीफ की, उन्होंने कहा जी कि वो भी कनाडा से के क्लोज थी। अब बाइडन साहब जो थे उन्होंने कहा जी कि मेरा बड़ा ऑनर था कि मैं एज अ प्रेसिडेंट मैंने यूएस को सर्व किया और मैं चाहता तो था कि मैं री इलेक्शन सीक करूं, लेकिन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड द कंट्री आई एम स्टेपिंग डाउन। और जिस वक्त तक मेरा टर्म है यानी कि नवंबर तक जो इनका टर्म रहेगा एज प्रेसिडेंट, वो कहते हैं जी मैं अपनी ड्यूटीज जो है फुलफिल करूंगा। आपको पता ही है कि ये जो इनकी फर्स्ट डिबेट हुई थी बाइडन साहब की असल में ट्रंप साहब के साथ, उसमें बहुत स्टैमर कर रहे थे ये, तो लोगों को लग रहा था कि अब ये चीजें आगे लेकर नहीं जा सकेंगे। फ्राइडे को हमने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि बाइडन साहब अपनी फैमिली के साथ डेलावर में बैठे हुए थे, तो फैमिली के साथ बातचीत कर रहे थे कि अगर ये स्टेप आउट करें तो फिर इनका क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो वही चीजें जो हैं वो बिल्डअप करती गई एंड फाइनली ही अनाउंस कि अब ये नहीं आगे लेके चीजों को जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रूडो साहब जो है हमारे जी बीसी में वकेशन के लिए जाएंगे और गए हैं, बल्कि संडे को जो कल जो था वो चले गए हैं वो, और वहां पे अपनी फैमिली के साथ 1 अगस्त तक जो है वहां पे रहेंगे। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उनकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं डिस्क्लोज की गई है, लेकिन स्पोक्स पर्सन जो है मोहम्मद हुसैन उन्होंने कहा जी कि पीएम ये जो ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए कनेडियन उनको तैयारा दिया गया है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है फॉर सेफ्टी, और वापस आने के बाद जो एयरलाइन का एक टिकट बनता है उनका भी, उनका फैमिली का भी, और वो सारे पैसे जो हैं ये रीएम्बर्स करेंगे। इसके अलावा जो जहां पे वो रहेंगे वहां पे रहना खाने पीने के सारे पैसे वो खुद करेंगे। पीएमओ ने कहा जी कि इन्होंने एथिक्स कमिश्नर ऑफिस जो है उसको सारा अपने ट्रिप के बारे में बताया था और उसने इस चीज को क्लियर किया है। इससे पहले भी लास्ट समर में भी ये बीसी में गए थे अपनी फैमिली के साथ और समर 2022 में ये कोस्टा रिका में गए थे वकेशन पे, तो आज उनके ऑफिस ने इस वकेशन की सारी अब डिटेल्स जो हैं बताई हैं। एलसीबीओ के वर्कर्स जो हैं दे आर बैक ऑन जॉब, लेकिन जो लिकर कंट्रोल बोर्ड ऑफ ऑन्टेरियो है वो कह रहे हैं जी कि स्टोर्स जो हैं कल यानी कि ट्यूसडे से पहले नहीं खुलेंगे। यूनियन रिप्रेजेंटिंग 10,000 वर्कर्स एंड मेंबर्स उनके साथ जो है उन्होंने एलसीबीओ के साथ एक डील रेटिफाई की थी और इसकी वजह से ये जो स्ट्राइक है अब एंड कर गई है, और ये आपको पता ही है कि 2 वीक से चल रही थी और लोग काफी परेशान थे, जिसमें फिर ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने स्टेप अप किया था और कहा था कि अगर एलसीबीओ नहीं तो और जो लोकल जो है डीलर्स इसमें लिकर में जो करते हैं डील करते हैं उनको उनकी तरफ आप देख सकते हैं। बहरहाल जी एलसीबीओ के साथ टेंटेटिव डील जो है वो हो गई थी। इससे पहले जो था एलसीबीओ ने रिफ्यूज किया था कि अगर ये जो है अपने शर्तें रखेंगे रिटर्न टू वर्क तो वो हम नहीं सुनेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि अब यूनियन भी कह रही थी कि नहीं न्यू मॉनेटरी डिमांड्स जो हैं वो रखनी पड़ेंगी, फिर काफी इनका झगड़ा चलता रहा। बहरहाल अब यूनियन ने कहा है कि ठीक है जी कुछ जो चीजें हैं वो आप मान लें और न्यू मॉनेटरी आइटम्स ना रखें, तो उस पे फिर एलसीबीओ के साथ इनकी डील हो गई एंड नाउ दे आर रिटर्निंग टू वर्क, दे हैव ऑलरेडी रिटर्न टू वर्क, लेकिन स्टोर्स जो हैं अब कल से सारे खुल जाएंगे। तो चलो जी, जो पीने वाले लोग हैं उनका तो एक मसला बहुत बड़ा ये मसला था, दुनिया में सबसे बड़ा बड़ा यही था मसला कि यार पीने के लिए किधर जाएंगे अब, तो ये इनका जी मसला हल हो गया। ठीक है, अमरीका में डायरेक्टर ऑफ सीक्रेट सर्विस जो है किमरली चीटो उन्होंने कहा है और आज माना है कि ट्रंप साहब का जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था वो सीक्रेट सर्विस का सबसे बड़ा फेलियर था इन डेकेड्स। डेकेड्स में क्या, अभी तो वो 9/11 भी जब हुआ था उसमें भी आपने यही कहा था फेलियर इन डेकेड्स, अब ये फिर कह रहे हो। ये आज जो है इनको बुलाया गया था, ये जो है किमरली चीटो को हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने के सुनने के लिए कि जुलाई 13 को ये जो उनके ऊपर शूटिंग हुई थी पेंसिल्वेनिया रैली के अंदर, तो इसमें एजेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। तो इन्होंने सारे का सारा आज ब्लेम अपने पे लिया। इन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, हमारा ओवरसाइट था, और ये जिस वक्त जब लॉ मेकर्स के सामने आए तो उन्होंने पूछा इनसे कि जो थॉमस मैथ्यू कुक्स जो कि सिर्फ 20 साल का लड़का था, जो कि एक सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के जिसने फायरिंग की थी बाइडन ट्रंप साहब के ऊपर, तो उसके बारे में आपको क्यों नहीं पता था, और काफी एंग्री थे लॉ मेकर्स आज जो है। सीक्रेट सर्विस जो थी उसको काफी दफा जो ट्रंप की कैंपेन है उसने कहा था जी कि सिक्योरिटी के मामले आपको बीफअप करने की जरूरत है क्योंकि हमको बहुत सारे खतरे मिल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको लाइट लिया, समझा कि शायद ये कोई ड्रामा कर रहे हैं। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी जो अलेजेंड्रो म्योरिकास उन्होंने भी इस चीज को माना कि यस बिल्कुल ये हमारा फेलियर था सिक्योरिटी एजेंसीज का, और बहुत सारे लोग जो हैं अब कह रहे हैं कि इनको किमरली साहिबा को रिजाइन करना चाहिए या कि बाइडन साहब को इनको फायर करना चाहिए, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन आज जब ये हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने आई है तो उनको काफी ग्रिलिंग जो है उसको उसका सामना करना पड़ा। बाइडन साहब जो हैं उनका तो हम आपको बता ही चुके हैं कि वो अब निकल चुके हैं रेस में से, तो उन्होंने अब एंडोर्स कर दिया है कमला हैरिस को टू रन फॉर प्रेसिडेंट इन 2024 जनरल इलेक्शंस अगेंस्ट ट्रंप। ये जो हैं कमला हैरिस साहिबा जो हैं, कुछ लोग तो अब इस पे कह रहे हैं कि ये अच्छी रहेंगी, कुछ लोग अब कह रहे हैं ये अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन बहरहाल जी इनके ऊपर जो है अब मिला जुला अमेरिकन्स का रिएक्शन है। ये जो है ये फॉर्मर प्रोसिक्यूटर हैं और कैलिफोर्निया की सेनेटर हैं, इन्होंने सबसे पहले जो है एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लड़ने की कोशिश की थी 2020 में और फिर ये हार गई थी, यानी कि हारी इस तरह से कि ये इनके नंबर्स कुछ ठीक नहीं आ रहे थे तो शी स्टेप्ड बैक और फिर उसके बाद बाइडन साहब ने इनको अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुना था और अब इनको एंडोर्स भी किया है। लेकिन अभी भी एंडोर्स उन्होंने किया बट दैट डजंट मीन कि इनको जो है नॉमिनेशन पार्टी की तरफ से मिल गई है। नॉमिनेशन तो इनको फिर भी विन करनी पड़ेगी क्योंकि अब इस नॉमिनेशन रेस में और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं और कोई गारंटी नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन नेक्स्ट मंथ अगस्त के महीने में जो होने वाला है उसमें डेमोक्रेट्स जो हैं इनको अपना नॉमिनी जो है वो चुनेंगे, चुन भी सकते हैं वैसे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग डेमोक्रेटिक रेस में अब एंटर हो गए हैं। पिछले साल जो है वो कहती है जी कि मैं जो ट्रैवल कर रही थी अमेरिका में तो उन्होंने बड़ी मुझे क्लियरली ये बताया है कि जो आने वाले अब हफ्ते हैं वो बहुत ही मुश्किल होंगे और उसके अंदर जो है काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी मैं काम करती रहूंगी और अगर जो है कमला हैरिस जीत गई इलेक्शन प्रेसिडेंशियल रेस जीत गई तो ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगी। शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वुमन एंड शी इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फर्स्ट ब्लैक वुमन, शी इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फर्स्ट साउथ एशियन वुमन टू सर्व एज द यूएस प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो काम है कोई इतना ज्यादा ईजी नहीं लग रहा है क्योंकि जो पब्लिक के अंदर इनका इमेज है वो कोई इतना अच्छा नहीं है और जो अभी तक पोलिंग रिजल्ट्स भी आए हैं वो भी कोई इतने धांसू किस्म के सामने नहीं आए हैं। शी इज द डॉटर ऑफ एन इंडियन मदर एंड अ जमैकन फादर और ये दोनों ही इमिग्रेंट्स थे और इसमें जो है इनकी पहले भी जब मैंने जैसे आपको बताया कि 2020 के प्राइमरीज में कोई अच्छी इनकी पोल्स नहीं आ रहे थे तो शी स्टेप बैक। व्हाइट हाउस जो प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन पेरे जो हैं उन्होंने इनका परसेप्शन तो इतना बुरा था कि जिस वक्त बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जीती भी तो भी उसको सामने आके एक स्टेटमेंट देनी पड़ी थी और लोगों ने समझा था कि शायद इसको बिल्कुल ही कास्ट असाइड किया हुआ है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की ये बड़ा जो है वाइटल हिस्सा है और जो है ये हमेशा रहेंगी बिकॉज शी इज द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन बहुत सारा स्टाफ जो था इनको छोड़ छोड़ के जाता था। वाशिंगटन पोस्ट ने इनके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट की थी और उन्होंने जो है स्टाफ से पूछा था कि भई आप कमला हैरिस के ऑफिस को छोड़ छोड़ के क्यों जाते हो, तो उन्होंने कहा जी कि हम जब इसके साथ काम करते हैं तो हमारा मोरल जो है बहुत लो रहता है और कम्युनिकेशन लाइन्स बिल्कुल ठीक नहीं है, सही तरह से चीजें कम्युनिकेट नहीं की जाती हैं और ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो था सिग्नल ये इसने लोगों के अंदर कोई सही मैसेज जो है वो नहीं भेजा था। बाइडन साहब ने इनको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिया था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में और उन्होंने कहा था कि यूएस मेक्सिको बॉर्डर जो है उसका मसला आपको हल करना पड़ेगा ताकि ये जो माइग्रेशन बहुत ज्यादा ग्वाटेमाला और होंडोरस और एल साल्वाडोर से हो रही है इसको रोकें। कमला हैरिस साहबा जो हैं उन्होंने 4.2 बिलियन का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तो लेकर आई थी वो कि जॉब क्रिएशन होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इससे करेंगे सेंट्रल अमेरिका में, ये जो कंट्रीज हैं, लेकिन ये जो फ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स है इसको वो रोक नहीं सकी थी और इनके ऊपर बेतहाशा क्रिटिसिज्म जो था न सिर्फ मेक्सिको से एल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला और होंडोरस से बल्कि खुद कंट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर आया था। जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने तो कहा था कि ये जो बॉर्डर जार आपने क्रिएट की है इन्होंने बिल्कुल बहुत ज्यादा ये जो क्राइसिस है इसको खराब करने की इसके ऊपर बॉल ड्रॉप किया है, यानी कि इसको बिल्कुल बर्बाद किया है, इसको करने की कोशिश की है। अलबत्ता इनके बारे में कहा जाता है कि शी इज वेरी बिग ऑन एबॉर्शन राइट्स और अभी जून 2022 में ये जो ओवर रूलिंग आई थी रो वर्सेस वेड की इसके अंदर इन्होंने कहा था कि नहीं रिप्रोडक्टिव फ्रीडम्स जो हैं होनी चाहिए और उस सिलसिले में इन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर जो है वो टूर्स भी किए थे। इसके अलावा ये कहती हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनका कॉस्ट नीचे आना चाहिए और जो गन रिफॉर्म्स हैं वो भी लाना चाहिए। लेकिन जो पोल्स आए हैं कुछ तो शो कर रहे हैं कि शी इज द राइट पर्सन टू टेक अगेंस्ट ट्रंप, कुछ ने कहा है कि नहीं ट्रंप साहब जो है वो जीतेंगे क्योंकि इनकी कोई इतनी ज्यादा जो है वो स्टैंडिंग नहीं है अमेरिकन्स के बीच में। इसके अलावा कुछ डेमोक्रेट्स अलबत्ता जरूर सोचते हैं कि ये शायद अच्छी प्रेसिडेंट बन सकती हैं, जो अभी रिसेंट पोल आया उसके अंदर 6 out of 10 ने कहा कि ही विल बी गुड प्रेसिडेंट, और जो 2 out of 10 थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल अच्छी प्रेसिडेंट नहीं बनेगी। इनकी सेम रेटिंग्स हैं जो कि बाइडन साहब की थी, लेकिन जो इनकी कैंपेन है उसने अभी जस्ट अबाउट 2 hours बैक उन्होंने अनाउंसमेंट एक की है कि विद इन 24 hours दे हैव बीन एबल टू रेज 81 million डॉलर्स टू रन हर कैंपेन। सो ये जो है काफी बड़ी जो है वो नंबर है। नितिन याहू साहब जो हैं फाइनली उन्होंने फिर से कह दिया है कि जी जो कतर हमारे बीच में निगोसिएशंस करवा रहा है फॉर सीज फायर एंड हॉस्टेज डील, उसके ऊपर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है नितिन याहू साहब का, उसने कहा जी कि ये सारे के सारे टॉक्स जो है हम वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ही लंबी जो है टेलीफोन कॉल जो है वो बाइडन साहब के साथ हुई है, और बाइडन साहब ने डेफिनेटली इनको कहा होगा कि भाई आप जो है इसके ऊपर बात करें। इसके अलावा जो है ये आज अमरीका के लिए निकल भी गए हैं और ये वापस आएंगे थर्सडे को अब इसराइल में वापस। जाहिर है कि इनको बुलाया गया होगा टू टॉक अबाउट दिस होल थिंग, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि हम जंग जारी रखेंगे जब तक कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे। उसके बीच में इंटरनेशनल कम्युनिटी का काफी ह्यू एंड क्राई आया है कि ये बेतहाशा जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। अब ये जो है इनके 4 points है, ये 4 points कहा जा रहा है कि ये जाके जी बाइडन साहब के साथ डिस्कस करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर योर्क गैलेंट जो है उन्होंने इनका डिसीजन जो है बड़ा वेलकम किया, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये इन्होंने विंडो फिर से खोली है, एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हॉस्टेज का रिलीज आएगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने भी अभी फ्राइडे को कहा था कि देर आर 10 yard line फॉर द डील, यानी कि अभी कुछ जो है फासला हमको और तय करने की जरूरत है। एनर्जी मिनिस्टर एली कोहन जो है उन्होंने एक टीवी के इंटरव्यू में कहा कि डील जो है हो सकता है कि विद इन 2 weeks अब हो जाए। उसकी वजह यह है कि हंड्रेड्स ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो हैं वो अब वहां पे इसराइल के एरिया हो रहे हैं, और अभी वीकेंड के ऊपर बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो थे वो आए हुए थे सारे, एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट नितिन याहू कि साइन डील क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की प्रॉब्लम यह है नितिन याहू साहब की कि जो इनके हॉटलाइन मेंबर्स हैं जो कि इनके साथ कोलिशन में है, उन्होंने इनको थ्रेटन किया है कि हम आपकी गवर्नमेंट को टॉपल करेंगे अगर आपने किसी किस्म की डील कतर के साथ बैठ के बनाने की कोशिश की या कि यूएस के प्रेशर में आके बनाने की कोशिश की। तो अब ये डबल सो एज सोर्ड के ऊपर जो है चल रहे हैं, बेचारे तो नहीं मैं इनको कह सकती हूं क्योंकि काफी इन्होंने जुल्म किए हैं पैलेस्टीनियंस पे, तो अब इनको समझ नहीं आ रही है कि अब ये अपनी कुर्सी बचाए हैं कि अब ये हॉस्टेज का डील करें लोगों का, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो शोर है मुल्क के अंदर। तो अब ये अच्छा जनाब, पहले तो हम आपको बता रहे थे फ्राइडे तक कि इसराइल के हमले जो हैं वो लेबनान तक जा रहे हैं, अब जनाब ये यमन तक भी जा रहे हैं। हुतीज जो हैं उन्होंने यमन के तेल अवीव में पहली दफा जो है लास्ट नवंबर से अटैक किया है, और हुदीज ने कहा है जी कि उन्होंने इनके कमर्शियल और मिलिट्री वेसल्स जो हैं उनको अटैक किया है क्योंकि वो जो है यूज किए जा रहे हैं इनोसेंट पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट। और हुतीज जो हैं अपने आप को अंसार अल्लाह यानी कि फ्रेंड्स ऑफ गॉड कहते हैं, और यमन का काफी सारा हिस्सा इंक्लूडिंग जो इनका कैपिटल है सना और जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न एरियाज हैं क्लोजर टू सऊदी अरेबिया उसको कंट्रोल करते हैं। दे इमर्ज्ड इन 1990s और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आने लगे थे 2014 में, इन्होंने रिबेल किया था अगेंस्ट यमनी गवर्नमेंट और फिर उसके बाद जो है सऊदीज ने यमनी गवर्नमेंट का साइड लिया था और हुतीज के खिलाफ फाइट किया था। इसराइल ने कहा जी कि ये जो हुतीज ने अपना ड्रोन भेजा था ये हमें लग रहा है कि कोई इरेनियन मेड समद 3 है, लेकिन इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है यूजेज के लिए, और ये वही है जो कि इन्होंने यूज किया था अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इसराइल ने फिर इसके जवाब में अपना जो फाइटर जेट था उसको भेजा था, और उन्होंने जो यमनी पोर्ट ऑफ हुदेदा है उसके ऊपर अटैक्स किए जिसके अंदर 6 लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं इंजर हुए हैं। इसके अलावा इसराइल ने इनका जो फ्यूल डिपोज हैं उनको भी हिट किया जिसकी वजह से मैसिव 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 फायर जो है वो देखी गई है ना सिर्फ वहां पे बल्कि सऊदी अरेबिया में भी। तेहरान ने इस पूरे के पूरे इसराइल के अटैक को कंडेम किया और उसने कहा जी कि तुम पूरे के पूरे इलाके के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिस्क कर रहे हो। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि भाई दोनों साइड्स को थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा जी कि इसराइल का जो ये स्ट्राइक है ये रीजन के अंदर टेंशन जो है उसको एग्रेवेट करेगा, तो इनको ये सब कुछ रोकने की जरूरत है अगर इनको गाजा के ऊपर बात करनी है और इसको वॉर को रोकना है। तो ये जनाब आज गर्मा गर्मी जो है रीजन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एएफपी की रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक 532 अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनको आज ढाका के अंदर जो है वो अरेस्ट किया गया है, क्योंकि अभी तक दो हफ्ते से जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके अंदर 163 लोगों की जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं। और आपको पता ही है कि ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि आप अपने फेवरेट को, यानी कि जो 1971 के वॉर के जो सोल्जर्स के बच्चे हैं उनको खाली आप गवर्नमेंट कोटा में जॉब्स दे रहे हैं, जबकि इस वक्त जो है 18 मिलियन जो स्टूडेंट है या यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है बांग्लादेश के अंदर। और वो कहते हैं जी कि हमका भी हिस्सा इसके अंदर गवर्नमेंट के जॉब के अंदर होना चाहिए। तो ये मसला है, तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट सीवियर टर्मोइल्स जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है उनकी लीडरशिप का इसको कहा जा रहा है। और इस वक्त जो है मुल्क के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है और सोल्जर्स जो हैं वो सारे अर्बन एरिया, सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि इंटरनेट ब्लॉकआउट जो है वो भी है, एज अ रिजल्ट कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशंस जो हैं वो नहीं हो सक रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कल यानी कि संडे के दिन ये कहा था कि भाई ये बिल्कुल इसको जो है ये हायरिंग को जो कोटास के अंडर है उसको रिड्यूस किया जाए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि मेन ऑर्गेनाइजर है इस सारे प्रोटेस्ट के, वो कहते हैं कि जिस वक्त तक पूरे का पूरा डिसीजन वापस नहीं लिया जाएगा हमारे प्रोटेस्ट जो है वो चलते रहेंगे। इस वक्त जो है यूएई ने भी एक स्टेप लिया है, क्योंकि यूएई के अंदर 57 बंगालीज जो हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला था शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ। आपको पता ही है कि अरब कंट्रीज में आप प्रोसेशंस नहीं लगा सकते, उनके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी है, मगर इन्होंने फिर भी प्रोसेशन निकाला, उसकी वजह से यूएई की गवर्नमेंट ने इनको पकड़ा है। 3 जो है उनको लाइफ सेंटेंस दिया है फॉर इंसाइटिंग रायट्स, 53 को जेल दिया गया है 10 ईयर्स के लिए और एक आदमी को जेल दिया गया है 11 ईयर्स के लिए। तो किसी भी अरब कंट्रीज में वो कहते हैं जी बेशक पीसफुल असेंबली है तो असेंबली आप नहीं कर सकते हैं, असेंबली की इजाजत नहीं है अरब कंट्रीज के अंदर। तो इसलिए दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। आपको पता ही है छोटे बड़े कोई भी आपके गैदरिंग्स हैं, वेडिंग्स हैं, आप यहां पे कर सकते हैं। 32 रूम लग्जरी होटल है, खाना बड़ा जबरदस्त है। दे आर लोकेटेड एट 2935 Drew Road मिसिसागा पे, और इनका नंबर है 6479653823। और जनाब एक डरहम समर फेस्ट आ रहा है 2024, 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में ये रहेगा। इसके अंदर कॉन्सर्ट में रहेंगे अहमद जहां जेब, और उसके बाद गजल जो कॉन्सर्ट है वो मुअज्जम अली खान के साथ होएगा। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए तो आप बूथ बुकिंग और स्पॉन्सरशिप्स के लिए कॉल कर सकते हैं 4168971683 के ऊपर। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज जो बात की उसको ट्विस्ट कर दिया, जो कि माशाल्लाह से मीडिया का काम होता है, हम खुद भी मीडिया से हैं, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस को लगता है कि उनकी रोटी उसी वक्त पकेगी जिस वक्त वो या तो कोई साजिशी सेंटेंस यूज करेंगे या कोई साजिश का एलिमेंट करेंगे। मैं आज भी आमिर से जब मेरी डिस्कशन हो रही थी मैंने कहा पूरी दुनिया के अंदर जो है मैं काम करके आ रही हूं, अब हर जगह जो है इंटरव्यूज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, चाहे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज थे, चाहे जो है फिल्म स्टार थे, चाहे कि कोई हेड ऑफ द स्टेट्स थे, जो वो कहते थे एज इज, जो हमारी ट्रेनिंग हुई हुई थी जर्नलिज्म की कि एज इज उसको रिपोर्ट करना है, अपनी तरफ से मसाला नहीं डालना। लेकिन हमारे जो अब जर्नलिस्ट हैं उनको लग रहा है कि जिस वक्त तक आप मसाला नहीं डालेंगे आपकी स्टोरी बिकेगी नहीं तो हिट्स नहीं आएंगे तो फिर क्या मजा है ना जी। इसलिए इमरान खान साहब के बारे में आज अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचा हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब तो अब कन्फेस कर चुके हैं कि मैंने कहा था कि GHQ रावलपिंडी में जाके आप जो है प्रोटेस्ट करें जिसमें कि इतने तोड़फोड़ हुए थे। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने ये ऐसा नहीं कहा था। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और दुनिया की हर पॉलिटिकल पार्टी हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पीसफुल प्रोटेस्ट करने का आपको इजाजत होता है। इमरान खान साहब ने का कहना था कि मैंने जब मेरे घर के ऊपर अटैक्स हो रहे थे पुलिस और रेंजर्स के जमान पार्क लाहौर में मार्च 14 को, और फिर अगेन मार्च 18 को लॉ एनफोर्समेंट ने forcibly they barged inside my house, तो मैंने अपने लोगों को कहा था peaceful protest outside GHQ रावलपिंडी आप करें। वो peaceful जो gathering और जो protest होते हैं वो किसी भी democratic country के अंदर किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कनाडा के अंदर क्यों खालिस्तानियों को नहीं पकड़ा जाता है, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा जोर देती है कैनेडियन गवर्नमेंट को, इसलिए क्योंकि कनाडा का कहना है कि वो जो प्रोटेस्ट निकालते हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। पीसफुल प्रोटेस्ट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का राइट है अंडर डेमोक्रेसी। या तो आप अनाउंस कर दो कि जी यहां पे मिलिट्री का रूल लेगा, हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे, फिर तो बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेटिक अगर कंट्री है पाकिस्तान, एवरीबडी हैज द राइट टू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का उनको कहा था, जिसको कि आप बहुत डिस्टॉर्ट करके आप सोशल मीडिया पे आज देखेंगे तो आपको नजर आएगा। बारा जी उन्होंने कहा जी कि ये मैंने उनको ये कहा था, लेकिन जाहिर है कि कुछ मिसक्रिएंट्स थे जो कि जाहिर है वो कहते हैं कि मेरी पार्टी के नहीं है। उन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है शेलिंग की इनसाइड और आउटसाइड भी, और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मुझे असैसिनेट करने का पहले तो गवर्नमेंट का प्लान था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये तो चीजें अब हाथ से बाहर निकल गई हैं, तो अब चलो इसको अरेस्ट ही कर लेते हैं इनसाइड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कहा कि मेरे काउंसिल जो हैं उन्होंने अब कहा है कि वो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें बैठने को तैयार हैं, और पुलिस के सामने वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए भी तैयार हैं, तो उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और अगर आप एक टेक्नोक्रेटिक रिजीम चलाना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप एक मार्शल लॉ जो है वो लगा दें मुल्क के अंदर, अगर आप पीस चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी इस वक्त जो है टेक्निकली एक मार्शल लॉ तो है ही, उसमें सिर्फ नाम नहीं है मार्शल लॉ का, लेकिन है तो आज उन्होंने ये बातें कही। तो जनाब हाफ ट्रूथ जो होता है ना, वैसे भी आधा सच वो दैट इज डेडली। हमेशा पूरी न्यूज पढ़ें और उसके ऊपर फिर आपकी जो है पकड़ होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उसने जी अप्रूव किया है 7 डे रिमांड फॉर इमरान खान साहब और उनकी वाइफ जो हैं बुशरा बीबी का इन तोशा खाना रेफरेंस। खान साहब ने कहा जी कि अताला तारर साहब ने भी थोड़े दिन पहले कहा कि मुझे बड़ा वीआईपी कंडीशन दिया गया है जेल के अंदर, तो मैं कहता हूं कि ये जो वीआईपी कंडीशन मुझे जेल में दिया है इसको जरा मीडिया के लिए खोल दो ताकि मीडिया आके मेरा सेल देखे। तो इसमें फिर अगर वो सच बोल रहे हैं फिर उनको डरना क्या है, फिर मीडिया को सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे सेल के अंदर आने दो। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उनको मिलिट्री जेल्स के अंदर बहुत ज्यादा बायस ट्रीटमेंट उनके साथ फेस किया जा रहा है, तो फिर आप ऐसा करो कि मुझे भी ये जेल में से निकाल के मेरा भी ट्रायल जो है मिलिट्री जेल में मुझे रख के उसके ऊपर मेरा जो है वो आप मुझे भी वैसे ही आप यानी के चार्ज करो जैसे कि आपने मेरे वर्कर्स को किया है। तो शखरा रेफरेंस के अंदर उन्होंने कहा जी ये सारी की सारी चीज पॉलिटिसाइज की जा रही है, अगर आपको मेरे खिलाफ एक्शन लेना है तो इन्होंने तो जाहिर है कि पैसे भी दिए थे, तो उन्होंने कहा जी कि अभी तक आपने क्यों नहीं फिर केस बनाया है नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने तो तोशाखाना से जो चीजें लूटी उनका तो 1 रुपया भी नहीं दिया तोशाखाना में, तो उन्होंने कहा जी कि उनके खिलाफ आपने क्यों नहीं किया है। उन्होंने कहा जी कि डेमोक्रेसी को ये अंडरमाइन करती हैं आपकी ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं। और उन्होंने इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि क्या आपकी वफादारियां पीएमएलएन के साथ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्रिटिसाइज किया जनरल फैज हमीद का अपॉइंटमेंट, उन्होंने कहा जी कि आप पूरे का पूरा टेक्निक जो टेक्नोक्रेट सेटअप है वो पाकिस्तान को क्राइसिस में से नहीं निकालेगा, इस मुल्क के अंदर क्राइसिस उसी वक्त खत्म होंगे जब आप एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यहां पे कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक्यूज किया इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर काम कर रहा है और अपने एक्शंस के लिए तो सॉरी नहीं बोल रहा है, दूसरों से हर वक्त अपॉलोजी जो है वो मांगता रहता है। फिर इन्होंने कहा जी कि ये जो बन्नू में पीस मार्च के साथ के जो मेंबर्स के साथ किया गया उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बिठाने की जरूरत, आपको पता ही है कि अभी बन्नू में जो मार्च हो रहा था उसके अंदर जो है काफी हुलड़बाजी हुई थी, उसमें 6 लोगों की डेथ हो गई है, तो वो इनका पीटीआई का कहना है कि जानबूझ के वहां पे उस मार्च के अंदर वो बड़ा पीसफुल था उसके अंदर हुलड़बाजी की गई और जानबूझ के इनके जो वर्कर्स हैं पीटीआई के उनको मारा गया। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने जी अरेस्ट किया है पीटीआई के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब को फ्रॉम पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये एक डिजिटल मीडिया सेल चला रहे हैं जो कि प्रोपेगेंडा मुल्क के खिलाफ और उसकी इंटेग्रिटी के खिलाफ जो है वो चला रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि न सिर्फ रऊफ हसन साहब को बल्कि पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान साहब जो हैं उनको भी पकड़ के पुलिस ले गई है। पुलिस ने इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा कि नहीं, हमने सिर्फ रऊफ हसन साहब को पकड़ा है और हमने बिल्कुल गौहर खान साहब को नहीं पकड़ा है, और ये जो है ये डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा दुनिया के अंदर फैला रहा है, तो हर कोई जो इस चीज में इन्वॉल्व होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। पीटीआई का जो डिजिटल मीडिया सेल है उससे उन्होंने डाटा और कंप्यूटर और कुछ चीजें ली है, जो एक्स के ऊपर फुटेज नजर आ रही है वो शो कर रही है कि पुलिस की जो व्हीकल्स और پولیس آفیشلز جو ہیں وہ ان کے جو سیکرٹریٹ ہے اس کے باہر ہے. اس میں پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ شاید انہوں نے ہماری چار عورتیں جو ہیں وہ بھی اریسٹ کی ہیں اور لیپ ٹاپس اور ڈاکیومنٹس لیے ہیں. پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان نے کہا کہ یہ جو اریسٹ ہیں دے آر بینگ میڈ آن دا انسٹرکشن آف فارم 47 گورنمنٹ. انہوں نے ہمارے اسٹاف کو ایک روم کے اندر لاک کیا اور جو ہے یہ ہماری چیزیں لے کر گئے. پولیس نے اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بالکل چار عورتوں کو اور آپ کے لیپ ٹاپ اور دوسری چیزوں کو نہیں, ہم نے صرف جو مٹیریل تھا جو کہ اینٹی پاکستان ہم کو لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ کمپیوٹرز, یعنی لیپ ٹاپ نہیں اٹھائے کمپیوٹر اٹھا لیے, پائن غلطی کی ہے نا. اچھا جی بہرحال تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے کیا. اس کے علاوہ آج پی ٹی آئی کے جو لائرز ونگ اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے ایک جو ہے ایک پروٹیسٹ کیا تھا اور یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ اٹ واز بینگ لیڈ بائی اپوزیشن لیڈر ان پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچڑ وہ کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے جو عمر ایوب خان صاحب ہیں اور بیرسٹر گور صاحب ہیں آج وہ میڈیا کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور یہ پریس کانفرنس اس سلسلے کی تھی جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے آج ایک بریفنگ دی ہے. عمر ایوب خان کی ذرا پلیز تصویر دکھا دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک پریس بریفنگ جو تھی یہ جو ہے وہ جو انہوں نے کی آئی ایس پی آر نے یہ شو کرتی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کا کمپلیٹ فیلئر ہے. پولیس ریڈ جو ہے وہ ٹو کلیکٹ ایفیڈیوٹس فرام پی ٹی آئی ممبرز بائی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ بالکل انفیئر ہے اور ہماری پارٹی کو انفیئرلی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کے اندر آپ کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں, پنجاب ویٹ امپورٹ جو کیا تھا ڈیورنگ موسن نقویز ٹینیور اس میں فارمرز کو اگنور کیا گیا تھا جس سے فارمرز کو بھاری نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر کون جو یہ اسمگلنگ ہے اس کے لیے ریسپانسبل ہے, نہ صرف یہاں پہ بلکہ بلوچستان سندھ اور کے پی کے بارڈر سے بھی اسمگلنگ بے تاشا ہو رہی ہے, تو کیوں ویجلز جو ہیں وہ اس کی طرف جو ہے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے تو پاکستان کو کمپیر کیا ہے عراق لیبیا اور سیریا سے, اس کا مطلب ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں اوور سٹیپ کر رہے ہیں اپنے رول کو, ان کا یہ کام نہیں ہے, ان کا کام ملٹری کی دیکھ بھال ہے اور ملٹری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دینا ہے. یہ تو ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے ایک فائنانس منسٹر ہوتا ہے, یہ ملٹری سپوکس پرسن نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اپنے جنرل باجوہ کے جو ریلیٹو ہیں صابر مٹھو جس نے کہ بلینز بنائے ہیں اس کو آپ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں, اور یہ جو ڈرگ ٹریفکنگ اتنی ہے اس وقت ملک میں چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے, جو یہ اتنا ٹیرورزم چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں. کیونکہ جب پی ٹی آئی کا زمانہ تھا تو انڈر نیشنل کاؤنٹر ٹیرورزم اتارٹی جو کہ سیٹ اپ کی گئی تھی 2008 جو ٹیرورزم میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی اور چیزیں ملک کے اندر بہت زیادہ امپروو کی تھیں, اب آپ ایک ہائبرڈ سسٹم ملک میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہائبرڈ سسٹم بالکل نہیں چلے گا. آپ کو ایک اکاؤنٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنانا پڑے گا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اس کو فالو کرنا پڑے گا انڈر کانسٹیٹیوشنز آرٹیکل 7. تو آج عمر ایوب خان نے کافی سخت قسم کی باتیں کی اور یہ باتیں انہوں نے اس وقت کی کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر لیوٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس میں راولپنڈی میں بات کر رہے تھے اور اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اگینسٹ ملٹنٹس اینڈ ڈیجیٹل ٹیررسٹ, اور انہوں نے پاکستانیوں کو بھی کہا کہ آپ کو ان سب کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل مافیا ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کا نام نہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا جی ایک پولیٹیکل مافیا ہے جو کہ آپریشن عزب استحکام کو کنٹروورشل بنا رہا ہے اور ملک کے اندر کوئی بھی نو گو ایریاز نہیں ہے, کوئی ڈسپلیسمنٹس نہیں ہے. پی ایم او کی جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی آن جون 24 اس نے بالکل کلیئر کیا تھا کہ یہ ایک ملٹری آپریشن نہیں ہے, اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش نہ کی جائے, لیکن ایک اسٹرانگ لابی جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز حل کرنا چاہتی ہے اور پولیٹیسائز سب کو کر رہی ہے. لیکن اس کے بیچ میں جماعت اسلامی کے چیف حافظ نعیم الرحمان جو ہیں انہوں نے کہا جی ایک ٹریڈرز کے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نیو بلائنڈ وار بالکل نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا جی کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو بھی کوئی ہے ادھر ملٹری میں بھی ان کو لوگوں کے وشز جو ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا اور پیس جو ہے اگر پالیٹکس میں اور بزنس میں نہیں رہے گا تو کچھ پیس ملک میں کام نہیں کرے گا. انہوں نے کہا جی بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ اور رولرز جو ہیں وہ پھر سے ایک غلطی کرنے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی پرانی غلطیاں جو ان کو سدھارا جائے. انہوں نے کہا جی جے آئی جو ہے اس کی ہسٹری ہے کہ وہ فورن انٹروینشن جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ اس کے خلاف جو ہے وہ سٹرگل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بہت بیڈ تھے. ہم نے جو بہت محبت دکھائی تھی یو ایس کو اس کے کانسیکوینسز بہت بیڈ رہے تھے, یو ایس کی جو وار تھی ان افغانستان اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو $200 बिलियन का नुकसान हुआ था और 100,000 के करीब जो हमारे बंदे थे वो मर गए थे। तो सिचुएशन जो है ये, अगर आपने ये अजमे इस्तेकाम चलाया तो और खराब होगी। और आजकल तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है। ये नईम साहब ने आज बातें की। पंजाब के अंदर जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं जी मरियम नवाज साहब, आज उन्होंने बहुत सारी नई चीजें जो हैं पंजाब में फिर से लॉन्च की हैं। एक तो उन्होंने एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो स्टार्ट की है पंजाब के अंदर, जिसमें कि एक औरत जो कि बहुत बुरे तरीके से घायल हो गई थी क्योंकि वो जो है छत से गिरी थी, तो उसको मियांवाली के हॉस्पिटल में डाला था। वहां पे डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको रावलपिंडी शिफ्ट करना पड़ेगा। हलीमा बीबी 40 इयर्स उनकी एज थी, उनको बहुत बुरे इंजरीज आए थे, तो उनको शिफ्ट किया गया था एयर एम्बुलेंस के थ्रू पिंडी हॉस्पिटल में फॉर ट्रीटमेंट अंडर गोल्डन आवर इनिशिएटिव ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। आज एक हाई लेवल मीटिंग जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही थी, जिसमें उन्होंने फाइनलाइज किया है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन है इट इज द नीड ऑफ द आवर, इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आएगा। उन्होंने कहा जी ये जो जितने भी कोर्सेज हैं इनको पढ़ाना चाहिए, बिल्डिंग, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो असेंबली एंड रिपेयर और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स इन फूड प्रोसेसिंग, बायोमेट्रिक ट्रेनिंग, लाइट इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेनिंग बच्चों को देने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि ऐसी कंपनियों के साथ आप अपना कोलैबोरेशन करें जिसमें कि ये इन्वेस्टमेंट भी यहां पे लेकर आ सकते हैं और जॉब्स क्रिएट करेंगे। अंडर दिस प्रोग्राम बच्चों को कोरियन, जापानीज, जर्मन, चाइनीज और अरबिक लैंग्वेजेस जो हैं वो सिखाने की जरूरत है। इसके अलावा मरियम नवाज साहब ने कहा जी कि पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अथॉरिटी जो है वो स्किल्ड जॉब्स जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रिएट करे और आउटसोर्स करें हैवी मशीनरी ड्राइविंग ऑपरेटर्स कोर्स, ताकि बच्चों को कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो डेवलप किया जा सके। उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स जो हैं वो गुजरांवाला, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान, अटक, टेक्सला, लैया, मियांवाली में खोली जाएंगी और 1000 लोगों को हायर किया जाएगा टू मेक अप फॉर द शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड TEVTA, यही जो है टेक्निकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट। और उसके लिए उन्होंने कहा जी कि 2000 पर स्टूडेंट पर मंथ जो है वो बजट इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा जो एक बच्चा जिसको कि पाकपतन में एक शॉप के डिस्प्यूट में जिंदा जला दिया गया था, उसका भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नोटिस लिया। उन्होंने अपनी कंडोलेंसेज भेजी फैमिली को और जो IG पुलिस हैं पंजाब के उनको कहा है कि जो भी कोई कल्प्रिट्स हैं उनको फौरन जो है सिलसिले में सजा दी जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन रिवर्स किया है टू बैन पासपोर्ट्स इश्यूएंस टू ओवरसीज पाकिस्तानी सीकिंग असाइलम इन फॉरेन कंट्रीज। ये जो आज हाई लेवल मीटिंग जो थी वो हो रही थी, इसको चेयर कर रहे थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार। उन्होंने ये डिसीजन के ऊपर रिव्यू किया और ये जो सेशन था दिस वाज अटेंडेड बाय सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर, सीनियर ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा जी कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस June 5 को अनाउंस की गई थी ये इसलिए क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में और अंडर इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं उसको देखते हुए ये ली गई थी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब जबकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा अनॉयंस आ रहा है तो इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो वहां पे अथॉरिटीज बैठे हुए थे उनको कहा जी कि टाइमली तरीके से आप ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स जो ये नेशनल्स बैठे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में उनको आप इश्यू करें और इसके अलावा इनको पासपोर्ट्स जो हैं विद इन 60 डेज आप देने की कोशिश करें। तो आज ये सारे हुक्म जो हैं जनाब इन्होंने दिए हैं। पाकिस्तान के लिए काफी वीकेंड के ऊपर अच्छी खबरें रहीं, बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों ने अवार्ड्स जीते एंड आई थॉट के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात ना करें, जो पाकिस्तान के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी बात करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान ने विन किया है सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स इन 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 2024 जो कि हो रहा था बैथ के अंदर यूके में फ्रॉम July 11th से 22nd। रजी हसन मंसूर ये जो हैं कराची से स्टूडेंट हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मोहम्मद अहमद भट्टी कराची स्कूल के थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मोहम्मद महद आरिफ जो हैं सुंदर स्कूल लाहौर से, उनको मिला ऑनरेबल मेंशन फॉर पाकिस्तान इन IMO 2024। लास्ट वीक भी दो जो पाकिस्तानी बच्चे थे उन्होंने दो ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे एट इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड इन अस्ताना कजाकिस्तान और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन स्टेम करियर प्रोग्राम और ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। मैथ्स की टीम जो थी उसको ट्रेन किया था कॉम सैट्स यूनिवर्सिटी के अंदर लाहौर कैंपस में और इसको मेंटर किया दिया था प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद और डॉक्टर हानी शाकिर ने। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और पायस यूनिवर्सिटी ने यह कंडक्ट किया था नेशनल साइंस टैलेंट कॉम्पिटिशन, जो कि वो हर साल कराते हैं 4 सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी में। उसके बाद इन्होंने कॉम्पिटिशन पाकिस्तान के 19 सिटीज में किया था और इसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, जो काबिल तरीन थे, उनको इस इंटरनेशनल ओलंपियाड के अंडर स्टैम करियर प्रोग्राम भेजा था पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनकी चॉइस बिल्कुल ठीक रही क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों ने काफी मेडल्स जीते। सुंदर पुलिस जो है उसने जी आप एक केस जो है फाइल किया है अगेंस्ट रॉबर्स ऑन द कंप्लेंट ऑफ प्ले राइटर खलीलुर रहमान कमर। उन्होंने कहा जी कि एक औरत आमना ने मुझे कांटेक्ट किया और उसने कहा जी कि मैं आपके साथ एक प्ले में कोलैबोरेट करना चाहता हूं, तो मैं जी उनके घर पे पहुंच गया। जब उनके घर पहुंचा तो कुछ आर्म्ड लोग जो थे उन्होंने मुझे जो है फोर्सिबली पकड़ा, मेरे से मेरा फोन, घड़ी, कैश खींचा, इसके अलावा मेरा एटीएम कार्ड लेके उसमें से 2.5 लाख रूपये जो है वो लिए, उसके बाद मुझे ब्लाइंड फोल्ड करके एक रिमोट एरिया में जाके फेंक दिया। ते भाईजान तुसी रात दे वेले एक औरत दे नाल मिलन वास्ते गए क्यों हैं जी? खलीलुर रहमान कमर की भाई शक्ल दिखा दें आप, क्यों बच्चों की शक्ल इस पे दिखा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, तो आप क्यों गए भाई रात को? आप उस लेडी को किसी एक नॉर्मल जगह, जो लाहौर में चीज जगह कम है, आप बुला लेते इसको कॉफी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में, आपको उसके घर जाने की भाईजान क्या जरूरत थी? बहरहाल जी इन्होंने सोचा कि जी मैं जरा ज्यादा समझदार हूं तो मैं घर में जाऊंगा उनके, तो भाजी घर गए तो फिर लुट गए बेचारे, अब क्या हो सकता है। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब जो है झड़पें बेतहाशा अपोजिशन और बीजेपी के बीच में चल रही हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने जम के अटैक्स किए राहुल गांधी जी को, क्योंकि ये जो नीट यूजी रो जो है ये चल रही है जिसमें के कहा गया था कि जी पेपर्स लीक किए हैं अंडर बीजेपी गवर्नमेंट, इसके अंदर जी प्रधान साहब ने कहा कि राहुल गांधी जी को बहुत अच्छे तरह से फंडामेंटल समझ आते हैं और खास तौर पे मैथ्स, तो ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस जब थे इनके जमाने में तो इन्होंने उसको क्यों नहीं खत्म किया, अभी ये मगरमच्छ के आंसू क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि ये जो सारी की सारी रियलिटी इनके सामने आ गई थी यूपीए रजीम के बीच में, जब अखिलेश यादव साहब जो थे यूपी के अंदर हेल्म पे थे और जो है इन्होंने उनको अब ना कुछ कह रहे हैं ना गांधी जी खुद इसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी इट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट बिल्स इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस बिल 2010, और इससे पहले भी उन्होंने जो है मुल्क के जो एग्जाम का सिस्टम था उसको सीरियस प्रॉब्लम ना समझते हुए कभी उसके लिए ना कहा। गांधी जी ने इसके ऊपर इससे पहले बात करते हुए कहा था कि ये बहुत ही सीरियस मसला है और ये जो एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर पेपर ऐसे ही लीक होते गए तो फिर ये कैसे जो है सिस्टम आगे चलेगा। और उन्होंने प्रधान साहब को ब्लेम किया था और उन्होंने प्रधान साहब को कहा था कि बाकी सारी दुनिया को ये ब्लेम करते हैं, खाली खुद को ब्लेम नहीं करते हैं ये, और इनको जो है फंडामेंटल्स जो है वो पता नहीं है, मिलियंस ऑफ लोग जो है वो परेशान है कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम ये फ्रॉड है और ये एजुकेशन सिस्टम जो है सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं अपने लिए, तो इस तरह से एजुकेशन का जो लेवल है वो कैसे हाई रहेगा, और उसी का जवाब जो थे धर्मेंद्र प्रधान गांधी जी को दे रहे थे। ऑन द ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल परमिट्स, अब जो गवर्नमेंट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उसने परमिट किया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कि वो आरएसएस की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा जी कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते आरएसएस की एक्टिविटीज में, ये 58 ईयर्स पहले जो था ये यानी कि 1966 बनाया गया था, तो ये आज मोदी गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है। ओरिजिनल ऑर्डर जो है उसको तो पास ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि बैन जो था इम्पोज किया गया था ऑन नवंबर 7, 1967 में, क्योंकि मैसिव एंटी काउ स्लॉटर प्रोटेस्ट जो थी वो हुई की गई थी पार्लियामेंट के अंदर। आरएसएस जना संघ जो है उसने मोबिलाइज सपोर्ट की थी लाखों की तादाद में लोगों को और उसके अंदर फायरिंग वायरिंग पुलिस की हुई थी, काफी लोगों की डेथ हो गई थी। तो नवंबर 30 को 1966 को इंदिरा गांधी ने बैन कर दिया था किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आरएसएस की एक्टिविटी में ज्वाइन करने के लिए। इसके ऊपर बात करते हुए आज ऑपोजिशन काफी जो भड़की हुई थी उस पर एआईएमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑर्डर आज आपने दिया है ये इंडिया की इंटेग्रिटी के और यूनिटी के खिलाफ है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी लॉयल्टी सिवाय नेशन के किसी के साथ शो नहीं कर सकता, चाहे वो आरएसएस है चाहे वो कोई भी है। सरदार पटेल जो है उन्होंने आरएसएस को बैन किया था फरवरी 1948 में जब इन्होंने गांधी जी का असैसिनेशन किया था, और ये जो बैन जो विदड्रॉ किया है ये बिल्कुल सही नहीं है। और आरएसएस जो है कभी भी हमारा जो तिरंगा है यानी कि हमारा जो फ्लैग है वो कभी भी नहीं उड़ाते मतलब हॉइस्ट करती है, और अभी भी नागपुर में ऐसा ही चल रहा है। और ये जो बैन था इसीलिए उस वक्त जो था इम्पोज किया गया था और अब भी इसको रहना चाहिए था। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जो हैं उन्होंने कहा जी कि इवन वाजपेयी साहब के टेन्योर में भी इसको विड्रॉ नहीं किया गया था। ब्यूरोक्रेसी जो है अब मुझे लग रहा है उन्होंने मजाक उड़ाया बीजेपी का, उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी अब निकर के अंदर आया करेगी ऑफिस के अंदर। कांग्रेस के जो लीडर हैं दूसरे पवन खेड़ा साहब उन्होंने भी कहा जी कि ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है और मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं। ये सारी बातें उन्होंने अपने एक्स के ऊपर लिखी, ठीक है जी। और जनाब आपको पता ही है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 आजकल जो है अनिल कपूर साहब कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान साहब अपनी जो एक फिल्म है उसके अंदर सिकंदर जिसका नाम है जिसको के बना रहे हैं A.R. मुरुगदोस उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ये इसको अनिल कपूर साहब कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑडियंसेस ने इनको एज अ होस्ट एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत ज्यादा व्यूअर्स जो हैं इवन बिग बॉस 2 से भी ज्यादा इनके साथ जुड़ रहे हैं। ये शो जो था ये प्रीमियर किया गया था ऑन June 21st जियो सिनेमाज बिग बॉस ओटीटी 3, जिसको के कहा जा रहा है कि 2024 के फर्स्ट हाफ का मोस्ट वॉच्ड इंडियन शो अब ये बन गया है। 3 वीक्स के अंदर 17 मिलियन लोगों ने इसको देखा है। सीजन 3 जो है उसके अंदर 42% मोर व्यूज आए हैं इन द फर्स्ट 3 वीक्स कंपेयर टू द फर्स्ट 2 सीजन जो के सलमान खान साहब जिसको के करते थे होस्ट करते थे। और जनाब रूमर्स कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे थे कि राहत फतेह अली खान साहब को दुबई एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट किया गया है और जो है ये बड़ी पाकिस्तान के लिए बदनामी है और 50,000 और चीजें कही जा रही थी। उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो मैसेज छोड़ा है। उन्होंने कहा जी मैं दुबई आया था कुछ सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करने के लिए और काम बड़ा अच्छे से चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो मैं अपने जो फैंस हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर र्यूमर जो सामने आता है उसके ऊपर आप ट्रस्ट मत किया करो, कुछ नहीं है। और यहां पे बहुत सारे सॉन्ग्स थे जिन पे मैं काम कर रहा हूं और उनमें से कुछ तो सुपर हिट सॉन्ग्स होंगे जो थोड़े दिनों में दुनिया जो है जिसकी बड़ी तारीफ करेगी आपके जब सामने वो आएंगे। तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करो इन र्यूमर्स को बढ़ाने में, क्योंकि ये र्यूमर्स जो है मेरे एनिमीज जो है बढ़ा रहे हैं। आप मेरे पे ट्रस्ट करो और आपका पावर और लव जो है वही मुझे आगे लेके चलता है। तो ऐसी बातें की राहत फतेह अली खान साहब ने। सलमान खान और संजय दत्त जो हैं वो इकट्ठे फिर से स्क्रीन पे 12 साल के बाद नजर आ सकते हैं। इनमें इन्होंने किया था एक स्पेशल कैमियो इन सन ऑफ सरदार में 12 साल पहले और अब ये फिर से दोनों नजर आएंगे। ये बातचीत कर रहे हैं एक म्यूजिक वीडियो के लिए फॉर अ सॉन्ग ऑफ एपी टिल्लों, और जो क्लोज डोर मीटिंग्स हैं सलमान के फार्म हाउस जो पनवेल में है उसमें चल रही हैं, जिसमें ना सिर्फ संजय और सलमान बल्कि टिल्लों के जो टीम है वो भी बैठी हुई है। वो कह रहे हैं जी कि ये देर आर हाई चांसेस कि ये दोनों जो है टिल्लों के साथ कोलैबोरेट करेंगे और इस वीडियो के अंदर दोनों नाचते हुए दिखाई देंगे। तो अब जब से ये खबर आई है तो लोग तो हो गए हैं बड़े एक्साइटेड और वो कह रहे हैं इनका इंतजार है जी ऐसा। अच्छा जनाब जितने भी खोती उतने आंख लोती, सुना है ना आपने पंजाबी में, बस PCB के भी वही चक्कर चल रहे हैं। जो यहां पे हमारे पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी आते हैं और कहते हैं कि जी ये जो हैं रमीज राजा साहब इन्होंने तो एक दिन भी कॉरपोरेट जो है वो की नहीं है, चलाई नहीं है कॉरपोरेशन, तो इनको क्या पता कॉरपोरेट सेक्टर कैसे चलाते हैं। लेकिन कैसर सगीर की बात आपको याद है, जब टेबल पे आप डिस्कशन के लिए बैठते हो ना तो लोग देखते हैं टेबल के दूसरी तरफ कौन बैठा है। अब अगर इन डिस्कशन में रमीज होता तो वो जोर देता कि नहीं जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आपको मानना पड़ेगा वरना खली वली। लेकिन अब वही बात मोहसिन नकवी साहब को कौन जाता है। PCB जो है उसने फाइनली जो है शायद वो ये कह रहे हैं कि जो ये एक तो हम आपके साथ T20 सीरीज करना चाहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो भी शायद जो है वो जो है एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर की जा सकेगी। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पहुंचे हुए हैं वन डे डिस्कशन के लिए श्रीलंका में, और वो कहते हैं जी कि मेरी डिस्कशन वहां पे होगी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शॉ से एट आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस इन कोलंबो। बीसीसीआई बहुत दफा कह चुका है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी अगर उसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरेंस ना दी। पीसीबी जो है उसने पहले ही कहा था इन्हीं के इंडिया के ही कहने पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप मैचेस लाहौर में करेंगे तो शायद हम आएंगे। पीसीबी ने कहा था कि यस हम तमाम मैचेस आपके लाहौर में कर सकते हैं और हम आपकी टीम के लिए पूरी सिक्योरिटी भी जो है वो करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि बीसीसीआई माना है, तो इसलिए शायद इंडिया के साथ जो मैचेस होंगे वो हो सकते हैं आउटसाइड पाकिस्तान। इन दोनों ने जो है बायलैटरल सीरीज 2012 के बाद से नहीं खेली है, सिर्फ ये एक दूसरे के साथ बड़े मैचेस में ही नजर आते हैं। और जनाब पाकिस्तानी बच्चों ने किया कमाल खेलों के मैदान में। पाकिस्तान के आसिफ खान ने विन किया जोन्स क्रीक ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप यूएसए के अंदर, और उन्होंने डिफीट किया अपने फेलो कंट्रीमैन एहसन इरफान को बाय 1-3। आसिम जो है वो करंटली वर्ल्ड नंबर 73 हैं और उन्होंने रिमार्केबल कमबैक किया आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट गेम अगेंस्ट थर्ड सीजी अशब, क्योंकि अशब जो है बहुत हाई लेवल, जाहिर है कि थर्ड सीजेड है और ये 73rd ब्रेकर, इन्होंने हराया अशब को और ये इनकी थर्ड पीएसए टाइटल ऑफ द ईयर है और इन्होंने अभी तक अपने करियर में 10 टाइटल्स जीते हैं। इससे पहले जो है अर्लियर दिस ईयर